ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் முண்டகோபனிஷத், பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ சிவ் சரூப்ஜி மகாராஜ். தேங்க் யூ. ஓம் நம சிவாய.
தோ புருஷ ஹே, உன் தோனோ புருஷோ சே பகவான் சேர்த்த புருஷோத்தம் உன்கோ கேத்தே ஹே. ட்ரீக் இசீ பிரகார் சே யஹாம் பீ கேத்தே ஹே கி உஸே जिससे सृष्टि उत्पन्न होती है उससे परे है. इस प्रकार से ये मंत्र में परमात्मा का जो परमात्मा की जो दिव्यता है, परमात्मा की जो पूर्णता है, उसका वर्णन किया. तो पहले वाले मंत्र में सृष्टि किस प्रकार से उत्पन्न होती है इसका विज्ञान बताया. दूसरे वाले मंत्र में, पहले वाले मंत्र में तो सृष्टि जब होगी तब माया का आरोप तो करना पड़ेगा जिससे सृष्टि होगी, क्योंकि माया के बिना तो ये अमूर्त है. जब स्वयं अमूर्त है तो फिर इसमें सृष्टि कैसे हो सकती है. तो बीज रूप से जो अव्याकृत है माया है उसको स्वीकार करके फिर विविध प्रकार की सृष्टि ये उसी परमात्मा से होती है. ये बात पहले बताई गई थी. अब इसमें बताया गया सबका निषेध करके कि परमात्मा, एकमात्र परमात्मा सृष्टि के आदि में, सृष्टि के मध्य में, सृष्टि के अंत में और सृष्टि के मध्य में सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है. इस प्रकार से इसमें बताया. अब देखिए आगे वाला मंत्र है. यस्मा जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायु ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी. अभी तो परमात्मा को बता रहे थे कि उसकी कोई मूर्ति नहीं है, वो शुभ्र है, वो दिव्य है, वो पूर्ण है, इस प्रकार से बता रहे थे. अब बोलते हैं कि यस्मा जायते प्राण, इसी से प्राण उत्पन्न होते हैं. तो ये देखो, प्राणों को उत्पन्न करता है, मन को उत्पन्न किया है, समस्त इंद्रियों को उत्पन्न किया है. ये आकाश को उत्पन्न किया, वायु को उत्पन्न किया, ज्योति और आप को उत्पन्न किया, पृथ्वी जो विश्व को धारण करती है. इस प्रकार से ये सृष्टि की उत्पत्ति परमात्मा से बताते हैं. ये प्राण इससे उत्पन्न होते हैं और मन उत्पन्न होते हैं. इसका अर्थ ये हुआ कि ये प्राणों का भी प्राण है, ये मन का भी मन है, ये इंद्रियों का भी इंद्रिय है. ये सारी सृष्टि को उत्पन्न करता है. ये निर्गुण निराकार निर्विशेष निर्धर्मक तो है, पर ये जो माया को स्वीकार करता है, माया माने इच्छा. माया का मतलब क्या होता है? सिर्फ परमात्मा की इच्छा. इसी को अज्ञान कहते हैं, इसी को माया कहते हैं, इसी को प्रकृति कहते हैं. तो ये तमाम इसके नाम हैं. इस माया को बिना स्वीकार किए, जो निर्गुण निराकार निर्विशेष निर्धर्मक है, जो सिर्फ सत्ता रूप है, प्रकाश रूप है, उससे सृष्टि तो नहीं हो सकती है. तो जब सृष्टि की रचना का जहां वर्णन होता है, वहां ये समझना चाहिए कि परमात्मा ने सृष्टि करने की इच्छा की. इच्छा माने माया को स्वीकार किया. एक और आप समझ लीजिए कि ये जिसका पहले श्लोक में वर्णन है, ये ब्रह्म है, और जिससे सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं, ये कारण ब्रह्म है. एक कारण ब्रह्म है, एक कार्य ब्रह्म है, और एक ये ऐसा ब्रह्म है कि इसकी कोई साध विशेषता नहीं जुड़ती है, निर्विशेष है. तो आप देखिए, ये जब सृष्टि की रचना की इच्छा करता है तो माया को स्वीकार करता है, माया को. फिर इसी से सब कुछ उत्पन्न होता है. और यदि ये अपनी माया को समेट ले, अर्थात इच्छा को दमन कर ले, तो ये शुद्ध स्वरूप सिद्ध होता है. इसीलिए आपको एक श्रुति सुना दूं कि किसी ने पूछा था कि महाराज ये जो हमारा मन है, ये मन हमारा जड़ है जी, मन जड़ है, प्राण जड़ है, ये मन जाता है तो कैसे जाता है और फिर प्राण जाकर के लौट आते हैं, फिर कैसे लौट आते हैं, ये इंद्रियां भी जड़ हैं, ये सब अपने अपने विषयों को कैसे ग्रहण करती हैं, केन चितम पद विप्रेशरम मन, केन प्राण प्रथमा प्रयुक्ता, ये आपने सुना होगा केन उपनिषद में। उसका उत्तर दिया था कि श्रोतस श्रोता मनुषो मनो यद बचो हवातम सो प्राणस प्राण, वो ये जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं या जितनी भी ये नारायण है, ये भूत हैं जितने भी, वो सब के सब परमात्मा को प्राप्त करके ही सक्रिय इस प्रकार से हो जाते हैं कि जैसे चुंबक है, चुंबक वो चुंबक को रख दो तो जड़ जो लोह कण है वो सक्रिय हो जाते हैं, वो उछल उछल करके उससे जुड़ने लगते हैं, यद्यपि वो जड़ है लोह के कण। देखिए यहां भी धातुओं में कितनी कितनी विशेषता है, कितनी विचित्रता है कि लोह के टुकड़े को यहां रख दो और यहां चुंबक लगा दो, रख दो तो वो चुंबक से खींच आएगा लोह का कण। इसी प्रकार से ये जो परमात्मा से सृष्टि उत्पन्न होती है, ये बोलते हैं कि ये तस्मादेव पुरुषार्थ नाम रूप बीजोपाधि लक्षिता जायते उत्पद्यते अविद्या विषय विकारो भूत नाम धेय मृतात्मक प्राण वाच रंभणम विकारो नाम धेयम अनतम। ये बोलते हैं कि देखो ये जो सृष्टि उत्पन्न हुई है ना, ये जो सृष्टि उत्पन्न हुई है, बोलते हैं कि ये परमात्मा का सिर्फ संकल्प मात्र है, विकारो नाम धेय मृतिका देव सत्यम, इसमें सिर्फ मिट्टी जैसे घड़े में सत्य रहती है, इसी प्रकार से इसमें सिर्फ परमात्मा ही सत्य है जो दुनिया ये दिख रही है ना। इसका तो वर्णन करना बड़ा कठिन काम है, ये दिख रही है, पर महात्मा महापुरुष कहते हैं दिखती तो है पर ये होती नहीं है, बिना हुए दिखती है। बाबा ऐसे भी कोई उदाहरण है जो बिना हुए दिखता है? बीजोपाधि लक्षिता जायते उत्पद्यते अविद्या विषय विकारो भूता। हां बोले ऐसे भी होता है, जैसे स्वप्न है, स्वप्न स्वप्न के पदार्थ नहीं होते हैं वहां और फिर भी दिखते हैं। यदि होते तो पहले भी आपसे कहा था कि जब आप जगते हो तब भी थोड़ी देर सही, एक सेकंड ही सही उसकी उपलब्धि होनी चाहिए यदि होते तो। ठीक किसी प्रकार से संसार में भी समझ लेना चाहिए कि यदि ये होते तो इसकी उपलब्धि प्रलय के बाद भी थोड़ी देर ही सही मिलती, पर जब परमात्मा ये समेट करके सो जाता है तो सिर्फ परमात्मा रह जाता है, परमात्मा के अलावा कुछ नहीं रहता है। इसका अर्थ ये हुआ कि परमात्मा के सिर्फ संकल्प मात्र से ये सृष्टि दिखती, सिर्फ संकल्प से। या यूं कहें कि सिर्फ संकल्प न समझ रहे हो तो इच्छा मात्र से, सिर्फ इच्छा है इस प्रकार से परमात्मा की हो जाती है। तो ये बोलते हैं कि नाम रूप बीज भूत जो अविद्या है, नाम रूप का जो बीज है वह अविद्या है, और अविद्या को ही माया कहते हैं, अविद्या को ही इच्छा कहते हैं। माने ये जो नाम रूप दिखते हैं ये झूठे होते हैं, मिथ्या होते हैं। वो अविद्या का विषय ये जो भूत है ना, वो सिर्फ नाम मात्र हैं, मिथ्या हैं और प्राण उत्पन्न हो अनात्मक प्राण वाचारंभम विकारो नाम धेयम वाचारंभो विकारो नाम धेयम मृतिका इत्येव सत्यम। ये बताना चाहते हैं कि भाई यहां कहीं कोई अटकने की वस्तु नहीं है, ये जो दिख रही है सब झूठी है, मिथ्या है, सिर्फ परमात्मा एक सत्य है। इस प्रकार से श्रुति अंतरात नहीं तेना विद्या विषयेण अन्यतेन प्राणेन सब प्राणत्व परस्य अपुत्रस्य, कि महाराज अभी तो आप निषेध किए थे कि प्राण नहीं है उसमें, और अब उनसे प्राणों की उत्पत्ति बता रहे हैं। अभी तो आप बता रहे थे कि उसमें कुछ भी नहीं है, और अब आप उससे सृष्टि उत्पन्न बता रहे हैं, तो ये बात हमारी समझ में नहीं आती है। तो बोले देखो, यदि प्राण होता या मन होता तो ये सृजन के पहले भी इनका स्वरूप कुछ होता वहां कि नहीं होता। जिस समय ये सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई थी, सिर्फ परमात्मा था, सदैव सौमिदम अग्रासित, ये सद ही इस सृष्टि के पहले सिर्फ सद था। तो यदि ये प्राण और मन आदि होते तो इनका स्वरूप वहां भी उपलब्ध होता, पर वहां तो होता नहीं है। तो बोले फिर ये उत्पत्ति कैसे आप बता रहे हो? वो बोले कि देखो, जैसे कोई व्यक्ति सोया था, उदाहरण देते हैं, स्वप्न दृष्टि नैव स्वप्न दृष्टि नैव पुत्रेण सपुत्रत्वम्। एक व्यक्ति सोया हुआ है और सो करके वो क्या देख सोता हुआ क्या देखता है कि मेरे एक बेटा है, और फिर वो जब जगता है, जब जगता है तो देखता है कि बेटा नहीं है। तो स्वप्न में जो देखा था बेटे को, तो उस स्वप्न के देखे हुए बेटे से ही बेटावान हो जाएगा क्या, पिता हो जाएगा क्या? नारायण नारायण। तेन विद्या विषयेन तेन प्राणेन स प्राणत्वं परस्य स्याद् पुत्रस्य स्वप्न दृष्टेन नैव पुत्रेण स पुत्रत्वं एवं मनः सर्वाणि चेन्द्रियाणि। इसी प्रकार से मन है या प्राण है, ये तो समझ लीजिए कि परमात्मा की इच्छा मात्र से ही सब प्रकट हुआ है। तो प्रकट तो हुआ। अच्छा, आप ये पहले निश्चित कर लीजिए कि जैसे देवदत्त स्वप्न में एक बेटा उत्पन्न किया कि मेरे बेटे है, बेटा है, और जब जगा तो बेटा नहीं है। अब उसका ये आप सोचो कि वो पिता हो गया? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि स्वप्न में जो देखा गया बेटा था वो झूठा था। सच होता तो स्वप्न के बाद भी उसकी उपलब्धि होती। इसी प्रकार से उदाहरण देकर के ये कह रहे हैं कि जैसे उसके बेटा स्वप्न हुआ था और वो जग करके बेटा वाला नहीं होता है, पिता नहीं होता है, इसी प्रकार से परमात्मा के स्वरूप में ये पहले कोई चीज ना थी, और फिर बाद में ये सब उत्पन्न हो गए। तो वो बोलते हैं कि ये ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे वो बेटा स्वप्न में देखा गया है फिर भी बेटा वाला नहीं होता है, इसी प्रकार से ये प्राण आदि का पहले स्वरूप ना होने पर, पहले कोई इसकी स्थिति नहीं है, बाद में जो दिख गया है इससे वो थोड़ी इस जगत का बाप बन जाएगा, ये बोलते हैं। तो फिर क्या हुआ? तो बोलते हैं कि ये तो अविद्या विषयेन अनतेन प्राणेन, अविद्या विषय अनित माने झूठ प्राण से ही सप्राणत्वम, उसको प्राण वाला कहा जाता है। एवं मनः सर्वाणि चेन्द्रियाणि, इसी प्रकार से उसके उसमें मन नहीं है, उसके इंद्रिय नहीं है, ये सब कुछ उसमें नहीं है, और फिर भी कुछ न हो करके उससे उत्पन्न हुआ ऐसा कहा जाता है। तस्मात् सिद्धमस्य, इस प्रकार से बोलते हैं कि ये बात सिद्ध हो गई कि वस्तु जितने भी हैं वह सब के सब असत है। अर्थात आप इतना समझ लीजिए कि यहां सृष्टि की उत्पत्ति में तात्पर्य श्रुति का नहीं है। श्रुति तो किसी न किसी माध्यम से परमात्मा को लिखाना चाहती, परमात्मा को दिखाना चाहती। वो इतिहास सृष्टि का या इसका टेवा बनाने के लिए सृष्टि का वर्णन नहीं है, क्योंकि सृष्टि के माध्यम से ही परमात्मा को सहजतया उस देखा जा सकेगा। यदि सृष्टि न होगी तो परमात्मा इतना सूक्ष्म है। अब आप देखिए, आपके अंदर ही जैसे कि पहले वर्णन किया गया है कि आपके अंदर ही वो परमात्मा चिंगारी की तरह, उदाहरण दिया था कि जैसे आग से चिंगारियां निकलती हैं और आगे में चिंगारी फिर समाप्त हो जाती हैं, इसी प्रकार से ये जो चिंगारियां हैं जो अहम हमारे यहां स्फूर्णा हो रही है, स्फूर्त हो रहा है, तो ये उस परमात्मा से निकली हुई है और फिर परमात्मा में ही सब विलीन हो जाती हैं। कब विलीन हो जाती हैं? जब उपाधि का बाध हो जाता है ज्ञानाग्नि के द्वारा। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुना। ज्ञानाग्नि से जब ये सब दग्ध हो जाता है, ज्ञान अग्नि से दग्ध होगा, बाहर की अग्नि से न दग्ध होगा। इस संसार को हाथ से नहीं मिटाया जाएगा, सिर्फ ज्ञान से, सिर्फ समझ से मिटाया जा सकता है, सिर्फ विचार से मिटाया जा सकता है। तो ये जिस किसी प्रकार से परमात्मा के स्वरूप की समझ जीव में आ जावे कि परमात्मा क्या चीज है और परमात्मा को प्राप्त कर ले वे, इसीलिए जगत की नश्वरता का, जगत की उत्पत्ति का, जगत के मिथ्यात्व का, जगत के असत्यत्व का भाषण श्रुति बार बार करती है कि इससे अनास्था हो जावे, सत में व्यक्ति की आस्था हो जावे। तो इस प्रकार से ये श्रुति जो है ये परमात्मा का दिग्दर्शन कराती है। एक बात और समझ लीजिए कि यदि कदाचित हमको बहुत से मंत्र याद हो जावे, बहुत से मंत्र याद हो जावे, और यदि बुद्धि में उस मंत्र का अर्थ या मंत्र का फल प्रतिष्ठित ना होवे तो आज याद किया हुआ वो बेकार है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण छांदोग्य उपनिषद में देवर्षि नारद सनकादियों से मिलते हैं। सनकादियों को नारायण प्रणाम करके वो बोलते हैं कि महाराज मुझे भी ये शोक संसार से पार कर दीजिए, तार दीजिए। अच्छा आपने क्या पढ़ा है? तो बोले ऋग्वेद पढ़ा हूं, यजुर्वेद पढ़ा हूं, सामवेद पढ़ा हूं, अथर्ववेद पढ़ा हूं। कि गंधर्ववेद? बोले गंधर्ववेद पढ़ा हूं, शिल्प विद्या भी पढ़ा हुआ हूं। बोले इनके अंग? बोले हां इनके अंग भी पढ़ा हूं, शिक्षा कल्पाद भी पढ़ा हुआ हूं, इतिहास भी पढ़ा हूं, पुराण भी पढ़ा हूं, स्मृति भी पढ़ा हूं, सब कुछ पढ़ा हूं। पर बोले कि जब आप सब कुछ पढ़े हैं तो आपको शोक किस बात का है? इसका मतलब है कि सिर्फ सुन लेने से या कोई श्रुति के रट लेने से काम नहीं बनता है, जब तक सुना हुआ जीवन में उतर ना आवे। एक छोटा सा उदाहरण देखो आपको कि एक बहू आई थी, उसकी सास ने कहा कि बेटा तुमको हलवा बनाना आता है? बोले अरे माँ मैं तो विज्ञान से एमए की हुई हूं, मुझे हलवा बनाने की क्या बात है, मुझे तो सब कुछ घर का काम आता है। बोले अच्छा, तो उन्होंने कहा कि बस सूजी का हलवा बना लो। अब वो घी लेकर के, सूजी लेकर के आग जला करके बैठ गई और घी डाल दिया और आटा डाल दिया, सूजी डाल दिया, भूनने लगी। अब तब तक भूल गए कि कितने आटा में, कितने चीनी में, कितना जल डालना है, कितनी चीनी पड़ेगी, कितना जल पड़ेगा, ये सब भूल गए। तो दौड़ी दौड़ी अलमारी में गई पुस्तक लेने के लिए जी, और तब तक ये जलने लगा। अब जलने लगा तो सास जी आई, बोले क्या होगा बहू? बोले माँ मैं तो भूल ही गई। क्या भूल गई? कि कितना इसमें है, इस आटे में कितना जल पड़ेगा, कितनी चीनी पड़ेगी। तो बोले कि तू ये चूल्हे में डाल दे आग को, ये पुस्तक को आग में डाल दे, तू मेरे से पूछ लेती। तो दोनों में अंतर हुआ कि नहीं? एक तो हो सब कुछ समझ है, समझ तो है पर उसकी अनुभूति नहीं है कि किस प्रकार से इसका फल प्रकट होगा व्यक्ति के जीवन में। तो इसी प्रकार से श्रुति ये अनेक प्रकार से समझा रही है व्यक्ति को कि जिस किसी प्रकार से फल तक ये पहुंच जावे। दुनिया किस प्रकार से उत्पन्न होती है परमात्मा में एक बार बता दिया गया कि दिव्य है, अमूर्त है, फिर उसमें प्राण आदि का वर्णन करते हैं, तो प्राण आदि का उसी प्रकार से वर्णन करते हैं जैसे स्वप्न में किसी व्यक्ति ने अपने बेटे को देखा, पुत्र होने को कि मेरे पुत्र हुआ ये समझा, और फिर जग करके नहीं हुआ तो वो पुत्रवान जैसे नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से ये परमात्मा भी ये सृष्टि वाला नहीं हो सकता है, सृष्टि करके भी सृष्टि वाला नहीं हो सकता है। तो ये श्रुति के अंदर हमारे हमारे लिए करुणा उत्पन्न है, जिस किसी प्रकार से परमात्मा को माने परमात्मा जो फल है उस फल तक पहुंच जाऊं। तो इस प्रकार से ये प्राण वाला, पहले प्राण का निषेध किया, मन का निषेध किया, समस्त इंद्रियों का निषेध किया था, अब बोलते हैं कि इसी से प्राण उत्पन्न होते हैं, मन उत्पन्न होता है, इसी से सब इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, आकाश उत्पन्न होता है, वायु उत्पन्न होती है, आग उत्पन्न होती है, जल उत्पन्न होता है, पृथ्वी जो विश्व को धारण करने वाली है, अर्थात सारी की सारी सृष्टि इसी से उत्पन्न होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये जो परमात्मा है एक विशेष बाजीगर की तरह है, चुटकी बजाता है, सृष्टि को उत्पन्न कर देता है। जैसे आपने सुना होगा श्री कृष्ण ने चुटकी बजाई, सारे ग्वाल बालों को उत्पन्न कर दिया, चुटकी बजाई सारे बछड़ों को उत्पन्न कर दिया, कोई मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर उनके बनाए हुए व्यक्ति को लगता है कि सच है, सिर्फ व्यक्ति को लगता है, परमात्मा को नहीं लगता। परमात्मा तो जानते हैं कि ये कल्पना मात्र है। अच्छा, तो कल्पना मात्र ही सही, तो द्वैत तो हो गया, कल्पना से इसकी सत्ता सृष्टि की तो हो ही गई। तो एक परमात्मा हुआ, एक सृष्टि हुई, तो द्वैत तो हो ही गया। बोले नहीं नहीं, द्वैत कैसे होगा, प्रतीति से किसी की सत्ता सिद्ध थोड़ी होती है। जैसे रस्सी में यदि सर्प का ख्याल हो जावे, रस्सी में यदि सर्प की किसी को भ्रांति हो जावे, तो रस्सी में प्रतीति मात्र से थोड़ी सर्प की सत्ता सिद्ध हो जाएगी, सिर्फ रस्सी ही रहेगी। चाहे आपको उसमें किसी प्रकार की ही वस्तु मालूम पड़े, पर वो सिर्फ रस्सी ही रहती है। इसी प्रकार से ये प्रतीति की कोई सत्ता न होने के कारण ये एक में द्वितीय का जो सिद्धांत है वह अक्षुण है, सिर्फ परमात्मा ही परमात्मा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये आपको बता रहा था कि भाई ये श्रुति बता रही थी कि पहले मंत्र में बताया कि सारे प्रमाणों की सिद्धि उसी से होती है। सारे प्रमाण सजीव तब होते हैं जब प्रमाण का भी प्रमाण पीछे रहता है। जैसे बताए ना, श्रोतस श्रोत्र मनुषो मनो ये बचो हवाचम सौ प्राण स प्राण, सारे प्रमाणों की सिद्धि उसी से होती है। और फिर देखो ये सृष्टि किस प्रकार से परमात्मा से होती है। हाँ, पहले निषेध कर दिया फिर सृष्टि बता दिया। तो ये जो विरुद्ध धर्म या विरुद्ध भाव बता रही है श्रुति, उसका सिर्फ इतना ही मतलब है कि जिस किसी प्रकार से परमात्मा को समझ आवे। अगला प्रसंग आपकी सेवा में कल समय हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति।